તારીખ 7/1/1995 પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈ દ્વારા દેવલાલીમાં થયેલ પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 78
લગા કિતના લગા બહોત લગા કિતને સેકન્ડ લગા બાત ખતો હજી કુછ નહીં બહોત કડવા લગા કિતના કડવા સિર કે બાલ ખડે હો જાય ઇતના કડવા લગા એસે બોલે બહોત કડવા હૈ કુછ નહીં चिराता है काली जी है बहुत कड़वी होती है जीत पर कोई स्वाद रह सकता है पर कितनी भी आम मीठे हो वापस आती है ना इधर महाराष्ट्र के सारे विश्व में बढ़िया से बढ़िया क्वालिटी जाने एक्सपोर्ट होती है यहां से बहुत अच्छी लगे तो उसका स्वाद टिकाए रखो जीत पर पकड़ के रखो उसको क्योंकि बहुत अच्छी लगती है वो ऑफिस करे के स्वाद को छोड़े ही मत हाँ सेकंडों में खत्म हो जाएगा कितने मिनटों में लगेगी मिनटों का काम नहीं है सेकंडों में खत्म हो जाएगा क्यों इस जीव का असंग रहने का निर्लोप रहने का स्वभाव है वैसे ज्ञान का भी निर्लोप रहने का स्वभाव है असंग तत्व है वो किसी के साथ संग करता ही नहीं वो संग होता ही नहीं इसका ऐसा हम अनुभव करें तो हमारे परिणमन में भी असंगता पैदा हो जाए असंग तत्व का असंग रूप में अनुभव करें तो अनुभव के साथ अनुभूति असंग हो जाएगी असंग असंगता अनुभूति में असंगता आ जाएगी बस तीन लोक को वश करना कठिन है आसान है कठिन नहीं है किंतु आसान है एक सेकंड भी असंग रहना आसान नहीं है फिर भी जिस ज्ञानी पुरुष का अंतःकरण निरंतर असंग रहता है उस ज्ञानी पुरुष के चरणारविंद में नमस्कार के सिवा दूसरा क्या करे कि जिसका अंतःकरण निरंतर असंग रहता है वो तीन लोग को वश करने से भी ज्यादा पराक्रम है ऐसा कहते हैं ये कला सिखाते हैं आचार्य श्री की कला सिखाते हैं कि देखो ये भेद ज्ञान की कला है वही मोक्ष की कला है वही असंग होने की कला है
एक क्षण पर असंग रहे हो कि त्राण लोक ने वश करवा करता पर विकट कार्य छे
विकट कार्य छे भुजाए करीने समुद्र स्वयं रमण समुद्र तरवा जेवी वात छे ખંભાત ને ખાડી એનો તરી કે ખડા હે વો તો વો જો હમારે બડે બડે મહાસાગર હે પેસિફિક ઓશન હે અટલાન્ટિક ઓશન હે ઉસકો માસ વો ભી ખડા હે સમુદ્ર 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 કે પાસ તો વો ભુજાએ કરકે વો તીરતા હે એસા પરાક્રમ સત્પુરુષ કા હોતા હે इसलिए उनको नमस्कार करते वो स्वयं रमण समुद्र तरी करी ऐसे तिर जाते हैं कैसे तिर जाते हैं कि श्री गुरु की कृपा से तिर जाते हैं ऐसा कहेंगे आप पूछोगे उसको आप कैसे तिर गए तो क्या करें श्री गुरु की कृपा से हम तिर गए हमारा इसमें कुछ नहीं ऐसा कहेंगे लोकोत्तर विनय है वो ऐसा विनय करेंगे पुरुषार्थ अपना है विनय ऐसे करेंगे और ऐसा विनय करेगा वो भगवान हो जाएगा ऐसा विनय करेगा उसका क्या होगा वो भगवान हो जाएगा विनय करे भगवान विनय करता और भगवान उसका कार्य क्या कहते हैं कि जो क्रोधादिक का होने में जैसे क्रोधादिक मालूम पड़ता है मैं रूप से, तो वैसे ज्ञान भी होता हुआ मालूम नहीं पड़ता, वो ज्ञान दशा का विषय है। इस प्रकार से आत्मा को और क्रोधादिक को निश्चय से एक वस्तुपना नहीं है। क्या सिद्ध किया? क्रोधादिक किसका? ये आपका उत्तर आ गया कि आत्मा को और क्रोधादिक को वास्तव में निश्चय से एक वस्तुपना नहीं है। इस रीति से आत्मा और आश्रमों का विशेष मैंने अंतर देखने से, जब यह आत्मा उसकी भिन्नता को जानता है या इसकी भिन्नता को अनुभव करता है, तब यह आत्मा अनादि होने पर भी, क्या अनादि है? अज्ञान से उत्पन्न हुई कर्ता कर्म की प्रवृत्ति, वो आत्मा को अनादि से होने पर भी अज्ञान से उत्पन्न हुई ऐसी कर्ता कर्म की प्रवृत्ति वो निवृत्त हो जाती है, उसका नाश हो जाता है। तो नाश होता है तो क्या अनुभव होता है? कि मैंने क्रोध किया ऐसी कर्ता कर्म की प्रवृत्ति का नाश हो जाएगा। क्रोध हुआ, होता हुआ जाना, लेकिन मैंने किया ऐसा अनुभव हुआ नहीं। क्रोध होता है जरूर, ज्ञान के बगल में है, बाजू में है, इसलिए जानने में आता है कि क्रोध हुआ, लेकिन मैंने किया वो नहीं, ये अपने आप हुआ है, मैंने नहीं किया, क्योंकि मेरा प्रवेश नहीं है उसमें, मेरा व्यापकपना नहीं है, वो तो पीछे उतर गया था, मैं आ गया। तो ये हुआ मैंने किया नहीं, मैंने किया भी नहीं, मैंने किसी से करवाया भी नहीं, और हुआ उसका मेरा अनुमोदन भी नहीं है, कृतकार्य अनुमोदन से छुट्टा हो गया, भिन्न हो गया, जाओ हुआ सो हुआ, जान लिया, इससे ज्यादा मेरे कोई लेना देना नहीं है। पर तत्व रूप जान लिया, पर के परखे में, पर के खाते में वो चला गया। इसलिए आत्मा को अनादि होने पर भी अज्ञान से उत्पन्न होने वाली ऐसी कर्ता कर्मों की प्रवृत्ति निवृत्त होती है, और ऐसी निवृत्ति मैंने नाश होने से, अज्ञान के निमित्त से होने वाला पौद्गलिक द्रव्य कर्म का बंध भी निवृत्त हो जाता है, मैंने नाश हो जाता है, और ऐसा होने से ज्ञान मात्र से ही बंध का निरोध सिद्ध होता है। ये ज्ञान ही बंध का अभाव का कारण है, ऐसा सिद्ध कर दिया आचार्य महाराज ने। लेकिन लोग मानते कि जानकारी हुआ वो ज्ञान, और इससे कर्म बंध नाश हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। ये अनुभव ज्ञान की बात है, सिर्फ जानकारी वाली बात नहीं है, सिर्फ विकल्प की बात नहीं है, ऐसा समझना। यहाँ तक रखे आराम चलती है वह किस तरह से? क्या एक पर्याय में दो अंश होते हैं? उन्हें कैसे पहचाने? ज्ञान धारा का फल तो संवर निद्रा और कर्म धारा का फल कर्म बंध है, ये एक ही पर्याय में किस तरह शक्य है? समाधान कीजिए। एक ही पर्याय में ज्ञानी को ज्ञान धारा और कर्म धारा चलती है वह किस तरह से? तो एक पर्याय के दो, एक समय के एक पर्याय के दो भाव में भाग है, समय में भाग नहीं है। फिर से एक समय का दो भाग नहीं हो सकते, समय का भाग नहीं होते लेकिन भाव का भाग होते हैं।
बराबर,
भाव का भाग होते हैं। तो उसमें क्या है कि जितनी शुद्धि हुई है साधक को, जितनी सिद्धि शुद्धि हुई है उतनी तो ज्ञान धारा है। ज्ञान धारा में ज्ञान की प्रधानता करके बोलते हैं, लेकिन वो शुद्धि परिणमन की शुद्धि है। तो गुणस्थान अनुसार शुद्धि है, चतुर्थ गुणस्थान से पंचम गुणस्थान में ज्यादा शुद्धि है, पंचम गुणस्थान से छठे सातवें गुणस्थान में, ऊपर ऊपर के गुणस्थान में शुद्धि ज्यादा है। अब एक चारित्र गुण का विचार कीजिए कि चारित्र गुण में कुछ अंश में वितरागता है और कुछ अंश में राग है। एक ही काल में दो होता है कि नहीं होता है? अगर अकेला राग होता और वितरागता नहीं होती, ऐसा तर्क करें तो वो साधक कैसे कहेगा? तो साधक नहीं रहता, वो तो बाधक मिथ्या दृष्टि तो है ही। अगर पूरी वितरागता होती तो फिर साधक कहेगा? वो तो वितराग हो चुका, पूर्ण हो चुका, हो गया, परमेश्वर हो गया। इसलिए साधक दशा में जितने अंश में शुद्धि है उतने उसको ज्ञान धारा नाम दिया, जितनी अशुद्धि है उसको कर्म धारा नाम दिया। तो एक पर्याय के दो अंश भाव से होते हैं, समय से नहीं होते हैं, भाव से अवश्य होते हैं। अच्छा, अपन संसार का दृष्टांत ले सकते हैं कि एक माँ है, वो अपने बच्चे को कभी मार लेती है, उसको लगता है कि बच्चा बिगड़ता है या झूठी हट करता है या जो हट करता है वो संभव नहीं है, ये मिट्टी खाता है, समझो ना। छोटे छोटे बच्चे दो तीन साल के हैं, ना देवे तो भी मिट्टी खा लेते हैं, पेट बिगड़ता है, तो उसको मारती है, आंख भी दिखाती है, क्रोध भी करती है, झापट भी मारती है, थप्पड़ मारती है। अब माँ को उस परिणाम में द्वेष तो आया ही है, तब तो मारती है, तो क्यों माँ को, माँ का प्रेम चला गया उस वक्त? अरे प्रेम है तब तो मारती है, गांव के लड़के को थोड़ी मारने को जाएगी, कोई गांव का लड़का मिट्टी खाता है तो उसको मारने थोड़ी जाएगी। हाँ, कब मारती है कि इसके बच्चे पर प्रेम है तो मारती है। तो राग भी है बच्चे पे और उस वक्त द्वेष का प्रसंग है तो द्वेष भी है, एक साथ है कि नहीं है?
बराबर,
एक साथ दो विरुद्ध परिणाम है कि नहीं है?
है,
है। होते हैं। तो एक क्या एक पर्याय में दो अंश होते हैं? होते हैं। उन्हें कैसे पहचाने? राग और वितरागता पहचानने में आती है उस तरह से। ज्ञान धारा का फल तो समझ नहीं रहा, ठीक है, और कर्म धारा का फल तो कर्मबंध है, तो कर्मबंध अल्प है और संवर में जरा अधिक है। इसलिए जो संचित कर्म है वो कम होते जा रहे हैं और आखिर में जाकर के निष्कर्म दशा को वो प्राप्त हो जाएगा। तो इसलिए कर्मबंध और संवर निजरा एक ही पर्याय में होते हैं, तो संवर निजरा ज्यादा है, खिलते हैं ज्यादा और बंधते हैं कम। खेलते हैं वो पुराना खेलते हैं और बंधते वो नया बनते हैं, वो एक ही पर्याय में होता है और उसमें कोई आपत्ति नहीं हो सकती। पूर्णता के लक्ष्य से शुरुआत करने के लिए जो शर्तें योग्यता लेने के हेतु है, क्या उसका दिग्दर्शन आत्मसिद्धि की 38वीं गाथा, कषाय की उपशांतता मात्र मोक्ष विलास, भवे खेद प्राणी दया, क्या आत्मार्थ निवास से हो जाती है, इससे हो जाती है। इसमें अवलोकन की भूमिका किस स्टेज में है? तो अवलोकन की भूमिका तो मात्र मोक्ष विलास रूप जो लक्ष्य हुआ इसके बाद की है, इसके बाद की है, तो उसमें वो नहीं आया, वो प्राथमिक भूमिका है। फिर आगे की भूमिका में अवलोकन आता है। जब मैं पूर्णता के लक्ष्य से अवलोकन करने लगता हूँ तब कोई विकल्प नहीं ठहरता ऐसा प्रतीत होता है। कुछ क्षणों बाद वह फिर उभरता है। ऐसे समय उस अवलोकन में से अगली भूमिका में आने के लिए, उसे उत्तीर्ण करने के लिए और कौन सी सीढ़ी पार करनी होगी समझाइएगा। ऐसा पूर्णता के लक्ष्य के बाद जो अवलोकन चलता है वो अपने परिणाम का निरीक्षण चलता है, और उसमें अपने दोष के भी परिणाम हैं और ज्ञान के भी परिणाम हैं, दोनों का निरीक्षण चलता है। और निरीक्षण चलते चलते उस परिणामों का जो अनुभव है उस अनुभव का परिचय होता जाता है। परिचय वही एक प्रक्रिया है जो पहचान को ले आती है। बिना परिचय किसी व्यक्ति की भी न पहचान होती है, बिना परिचय न किसी चीज वस्तु की भी पहचान होती है। पहचान होती है तो परिचय से ही होती है, इसका दूसरा कोई तरीका है ही नहीं जगत में। तो उस तरह से अपने परिणामों में स्वभाव जाति के भी परिणाम ज्ञान में है और विभाग जाति के परिणाम भी रागादि कषाय रूप होते हैं। दोनों के अनुभव का परिचय अवलोकन से आता है तब उसकी जाति की पहचान आएगी, और जाति की पहचान आने के बाद ये जो भेद ज्ञान का प्रयोग वाली आगे की स्थिति पैदा होगी और उसमें से स्वरूप निश्चय होएगा। इस तरह से आगे की भूमिका है, और वो विषय मंगल प्रारंभ में लिया है, जो अभी पुस्तकें सबको दी किताबें, उसमें पहला आर्टिकल है मंगल प्रारंभ, उसमें वो बात दिया है। આગળ લેવું છે અભિપ્રાય છે તમારી પાસે પુસ્તક છે તમારી પાસે નહીં નથી લેવા और कोई प्रश्न हो तो बोल दीजिए, वरना ये अभिप्राय वाला आर्टिकल जो है थोड़ा आगे लेते हैं। उपदेश के परिप्रेक्ष्य में विचार करने पर पारमार्थिक उपदेश प्राप्त होने पर भी ज्ञानी से सीधा पारमार्थिक उपदेश सुनने को मिलता है, ऐसा होने पर भी वह उपदेश का परिणाम नहीं होने का भी कारण बनता है, उसमें अभिप्राय के कारण से जो जो प्रकार बनता है वे प्रकार निम्न दृष्टांतों से विचार करने योग्य है। जैसे पारमार्थिक सिद्धांत ऐसा है कि ज्ञान आत्मा में से आत्मा को आत्मा से होता है। क्या पारमार्थिक सिद्धांत ऐसा है कि आत्मा को जो ज्ञान होता है वो आत्मा में से होता है और आत्मा से होता है और आत्मा को होता है। ऐसा श्री गुरु का जो वचन है उनको आप बराबर कहते हैं, यथार्थ कहते हैं, ऐसा हम कहेंगे कि जी आपकी बात सही है। परंतु श्रवण काल में प्रत्यक्ष लाभ हो रहा है ऐसा लगता है। श्रवण काल में क्या लगता है कि प्रत्यक्ष लाभ मिल रहा है, जैसे ज्ञान सामने से मिलता हो ऐसा लगता है। पर उससे लाभ होने का अभिप्राय उस वक्त दृढ़ हो जाता है, घूंटन होकर के दृढ़ हो जाता है कि लाभ पर से हो रहा है हमको, ऐसा लगता है तो वो बात दृढ़ हो जाती है। वहां ऊपर ऊपर से तो ऐसा कहे कि पर से लाभ कुछ नहीं होता, पर द्रव स्वद्रव भिन्न है, परंतु अभिप्राय में लाभ बुद्धि से जीव प्रवर्तता है, जिससे अपने को जिसका ख्याल अपने को आता ही नहीं, अपने को ख्याल नहीं आता कैसे वो विपरीतता दृढ़ हो गई, सुनते सुनते वो ख्याल नहीं आता है। उसी प्रकार वो एक दृष्टांत लिया, अध्यात्म के सिद्धांत में देव शास्त्र गुरु तथा श्रवण वांचन विचार विकल्पात्मक, मनन ज्ञान का क्षोभ और एक समय की पूर्व पर्याय, जिसको व्यवहार से धर्म साधन कहने में आया है, व्यवहार से उनको धर्म साधन कहने में आए हैं। जो व्यवहार से साधन है वो परमार्थ से बाधक है, क्योंकि परमार्थ से तो अंतर्मुख होना वही साधक पना है, ये सब बाह्य निमित्त में उपयोग जाता है उतना बाधक पना होता है। ऐसा अभिप्राय न गढ़ने में आए, तो वो अभिप्राय न घड़ाए, वहां तक प्रयत्न उसी प्रकार के बहिर्मुख परिणाम में वर्तने का रहता है। क्योंकि अभिप्राय वो है कि हमारे साधन है, तो जितने भी साधन है उसी के ओर परिणाम हमारा रहेगा। इसलिए वह जीव बहिर्मुखता से विमुख होकर के अंतर्मुख अपना त्रिकाली स्वभाव के प्रति आ सकता नहीं है, उसका परिणाम बाहर ही बाहर लगे रहेगा, बाहर में ही लगा रहेगा। कारण कि अभिप्राय में तो वह तथाकथित बाह्य साधन को ही सत्य साधन रूप मान लिया है, और मानने से उसकी अधिकता उसको वर्तती है, प्रधानता बाह्य साधन की आ जाएगी, ये परिस्थिति हो जाएगी। इसलिए वह अंतर्मुख हो सकता नहीं। इस प्रकार परिणमन में मुख्यता रहती होने से रहने में अभिप्राय का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा फाड़ा है, बहुत बड़ा बड़ी भूमिका है। यही कारण अभिप्राय का मूल वहां रहता है। तो उसमें क्या कहां मुमुक्षु जीव धर्म साधन की प्रवृत्ति करने के बावजूद भी अभिप्राय की भूल में कैसे फंसा हुआ है, वो विचारणीय प्रश्न रहता है। तो अभिप्राय की भूल के कारण से उसको उपदेश मिलता है लेकिन परिणमन नहीं हो पाता, क्योंकि भूल अभिप्राय के अंदर में बैठी है। मालूम नहीं पड़े, अवलोकन के बिना मालूम नहीं पड़े। तथा मुमुक्षु जीव को अधिक गुणी मुमुक्षु के प्रति और गुणातिशयवान सत्पुरुष श्री गुरु और सद्देव के प्रति सहज बहुमान का भाव वर्तता है, स्फुरित होता है, वो विनय सहज होता है मुमुक्षु में। कारण कि वह स्वयं ही ऐसा गुण प्राप्ति का तीव्र अभिलाषी है। जो स्वयं गुण का अभिलाषी होता है उसको दूसरे गुणी के प्रति विनय बहुमान भक्ति आए बिना रहता नहीं है, ये सहज परिस्थिति है। वहां गुण प्राप्ति का अभिप्राय योग्य अभिप्राय है। क्या गुण प्राप्ति का जो अभिप्राय है वह तो योग्य अभिप्राय है, फिर भी अन्य जीव या पदार्थ प्रति राग करने का अभिप्राय उचित नहीं है। गुण प्राप्ति का अभिप्राय उचित है लेकिन राग करने का अभिप्राय उचित नहीं है। राग करो वो अलग बात है, अभिप्राय से करो वो अलग बात है, दोनों में अंतर है। यहां अभिप्राय का प्रकरण चलता है कि अभिप्राय को पकड़ो, बात थोड़ी सूक्ष्म में पड़ेगी लेकिन ऐसी भूल हो जाती है तो गड़बड़ हो जाती है।
दोनों में डिफरेंस पकड़ना चाहिए। अभिप्राय का क्या है?
कोई भी मुमुक्षु को अपने से अधिक गुणवान हो कोई मुमुक्षु या कोई गुणातिशयवान ज्ञानी पुरुष हो तो उसके संग से गुण प्राप्ति का अभिप्राय उनको रहता है, तो वो उचित अभिप्राय है। उस अभिप्राय से वो संग करता है तो भी उचित ही है, पर यथार्थ है। लेकिन दूसरे पदार्थ के प्रति राग करने का अभिप्राय वो अभिप्राय उचित नहीं है। विनय करने का अभिप्राय उचित है, राग करने का अभिप्राय उचित नहीं, उसमें सूक्ष्मता है। वो तो ज्ञान करता है, उसको राग करता है ऐसे नहीं बोलते हैं, वो तो ज्ञान है, उसका ज्ञान है, उसको विवेक कहते हैं, उसको राग नहीं कहते हैं। यद्यपि मुमुक्षु भूमिका में राग होना संभवित होने से, क्योंकि वो तो मुमुक्षु है तो राग तो संभवित है, वो कोई वितराग तो हुआ नहीं, तो राग होना संभवित होने से वहां गुणज्ञता के साथ साथ प्रशस्त राग सहज उत्पन्न होता है। ये सहज भूमिका इसकी और सहज होगा भी, परंतु सहज राग होना और अभिप्राय पूर्वक राग करना अथवा राग करने का अभिप्राय होना उसमें पूर्व पश्चिम जितना अंतर है उसमें बहुत बड़ा अंतर है। राग हो जाए कोई आपत्ति नहीं, लेकिन राग करने का अभिप्राय से राग हो तो ये बहुत बड़ा अपराध है, ये करने योग्य नहीं है। तो क्या होता है कि ओग संज्ञा में करने का अभिप्राय रहता है और पहचान में सहज होता है, ये अंतर पड़ जाता है। बहुत सी ऐसी बातें हैं हमारे यहाँ जो इसका सत्संग में यथार्थ विचार नहीं करने में आए, या समझ ठीक नहीं करने में आए तो गुण को अवगुण और अवगुण को गुण में खतानी हो जाती है, खतावनी में फर्क हो जाता है। जैसे ज्ञानी हृदय के कोमल होते हैं, ज्ञानी होते हैं कोमल हृदय वाले होते हैं, फिर भी अपने सिद्धांत में दृढ़ और मक्कम होते हैं, तो वो मक्कमता है कि जिद है? जिद को मक्कमता में नहीं ले जा सकते और मक्कमता को जिद में नहीं ले जा सकते, क्योंकि जिद है वो अवगुण है और मक्कमता है वो सद्गुण है। ऐसे बहुत सी बातें हैं। तो अगर सत्संग से सही बात समझ में नहीं आए तो गुण को अवगुण में ले जाएंगे और अवगुण को गुण में ले जाएंगे, ये गड़बड़ हो जाएगी। ये मार्ग तो दोष निर्दोषता वाला की छटनी का तो मार्ग है। दोष निर्दोषता कोई नहीं समझ सके तो दोष को निर्दोषता बता देंगे, निर्दोषता को दोष गिन लेंगे, बात विपरीत हो जाएगी बिल्कुल। जिस जीव को अभिप्राय पूर्वक ऐसा राग होता है, राग करना चाहिए ऐसा अभिप्राय पूर्वक राग होता है, उसको तो राग रस चढ़ जाता है, उसको राग में रस आए बिना रहेगा नहीं, तो उसको राग रस चढ़ जाता है। अभिप्राय पूर्वक मैंने एक निर्णय कर लेता है कि करना चाहिए, हाँ वो करने लायक है ऐसा अभिप्राय हो तो उसमें राग रस चढ़ जाएगा। और जिसको राग रस चढ़ता है उसको ज्ञान रस नहीं चढ़ता है, आत्म रस नहीं चढ़ता है। खास करके राग कहीं कहीं ऐसे होता है कि भाई ऐसा राग तो करना चाहिए। दूसरी बात वो है कि शास्त्र पढ़ते पढ़ते परलक्षित शोषण बढ़ता है, तो वहां भी कर्तृत्व बुद्धि से ये प्रवृत्ति करने में आती है तो क्षोभसम का रस चढ़ जाता है, जानकारी बढ़ती जाती है और क्षोभसम का रस चढ़ जाता है। तो ज्ञान का क्षोभसम का रस चढ़े, परलक्षी ज्ञान का, बाह्य ज्ञान का क्षोभसम का, जानकारी का रस चढ़े, उसको अंतर ज्ञान का, आत्मज्ञान का रस नहीं चढ़ेगा, आत्मज्ञान से दूर हो जाएगा। जानकारी बढ़ जाएगी, शास्त्र ज्ञान बढ़ जाएगा और आत्मज्ञान से दूर हो जाएगा। तो ये बात सब सत्संग के बिना तो समझ में आए नहीं। कृपालु देव ने सत्संग पर क्यों इतना ज्यादा वजन दिया? बहुत आटी घूटी वाली बहुत अटपटी बातें हैं, तो मार्ग चढ़ने में पढ़ने का हजार ठिकाना है, चढ़ने का एक ही रास्ता है, सत्संग के बिना तो समझ पड़ेगी नहीं। जिसको अभिप्राय पूर्वक राग होता है उसको तो राग रस चढ़ जाता है, और राग रस चढ़ जाने से साथ साथ विपरीत अभिप्राय भी दृढ़ हो जाता है। परंतु जो अभिप्राय विरुद्ध राग हो तो उसके प्रति सहज निषेध आए बिना नहीं रहता। वस्तुतः अभिप्राय में पर पदार्थ की महत्ता महानता स्वीकार हो तो निज अनंत सामर्थ्य का अस्वीकार रूप होने का बड़ा दोष आ जाता है। अभिप्राय में पर पदार्थ की महानता और महत्ता का स्वीकार हो गया तो निज अनंत सामर्थ्य का स्वीकार करने का अस्वीकार करने की परिस्थिति बड़ा दोष वाली हो जाएगी, और जहां अपना निज अनंत सामर्थ्य का अस्वीकार होता है वहां स्वरूप श्रद्धा का प्रतिबंध आ गया, उस स्वरूप की श्रद्धा उसको सम्यक दर्शन होगा नहीं। इसलिए ही ज्ञान दशा में अभिप्राय की भूल नहीं होती। ज्ञान दशा में जो भी दोष है, साधक दशा में जितना दोष बाकी रहा, कर्मधारा जिसको कहते हैं, उसमें अभिप्राय पूर्वक के दोष में भूल नहीं होती। इसलिए ज्ञानी का मत वो सही मत है, जो जिन मत है वो ही ज्ञानी का मत है, ज्ञानी का मत है वो जिन मत है, अभिप्राय की भूल ज्ञानी को होती नहीं है। इसलिए कहीं भी विवादास्पद विषय चलता हो तो ज्ञानी का अभिप्राय को देखना पड़ता है कि ज्ञानी क्या कहते हैं प्रयोजनभूत विषय में, और प्रयोजनभूत विषय में ज्ञानी की भूल हो तो भूल गिनी जाती नहीं है। ज्ञानी को सच्चे निमित्त पंच परमेष्टि आदि के प्रति मचक आती है तो भी वह उससे लाभ मानते हैं नहीं, मचक आती है, राग होता है, बलन होता है, एक मचक है, पूर्ण वितरागता नहीं है तो अशक्ति के कारण ये परिणाम आएंगे, लेकिन उससे लाभ नहीं मानते। तथा जो कोई जीव राग का अभाव करना चाहता है, जो भी प्राणी राग का अभाव करना चाहता है, उसे प्रथम सर्व पर पदार्थ के प्रति इष्ट अनिष्टपने का अभिप्राय मिटाना आवश्यक है। बाद में राग द्वेष मिटेगा, कई मुमुक्ष ऐसे प्रयोग करते हैं कि हम तो जब जब हमारे उदय में चलते हैं तो नाता दृष्टा रहने का प्रयास करते हैं, और ऐसा विचार करते हैं कि कोई पदार्थ इष्ट भी नहीं, कोई पदार्थ अनिष्ट भी नहीं, इसलिए ज्ञाता रह जाओ। लेकिन अभिप्राय में इष्ट अनिष्ट तो रखा है, इसका क्या, ये प्रयोग कभी सफल होने वाला नहीं है। मतलब वो तो जो पर्याय में फेरफार करने का अभिप्राय है वो तो कभी वो लेंगे प्रश्न, उसमें से निकाल लेना थोड़ा मैं, ठीक है। यहाँ जो विषय चल रहा है कि जीव राग का अभाव करना चाहता है, जो जीव, उसको प्रथम सर्व अन्य पदार्थ के प्रति इष्ट अनिष्ट पने का अभिप्राय मिटाना आवश्यक है तो राग मिटेगा। पर पदार्थ तो ये मात्र है, जितने भी थे वो तो नहीं मात्र है, और वो पदार्थ में कोई इष्ट अनिष्ट तो है ही नहीं, इष्ट अनिष्ट पना भी उसमें कुछ रूप अभिनिवेश है। जो पदार्थ अच्छा बुरा नहीं है फिर भी उसको अच्छा बुरा भ्रांतिवश कल्पना करना, ये स्वरूप विपरीतता है, मिथ्या ज्ञान में स्वरूप विपरीतता होती है, स्वरूप विपरीतता हो गया, जिसका स्वरूप ऐसा है ही नहीं, जिसका स्वरूप अच्छा बुरा है नहीं उसको अच्छा बुरा ज्ञान में लेना वो स्वरूप विपरीतता है ज्ञान के। जब तक अभिप्राय में पर पदार्थ के प्रति इष्ट अनिष्ट बुद्धि वर्तती है तब तक उदय काल में आत्म जागृति उत्पन्न ही नहीं होती, बड़ी तकलीफ मां हो जाएगी कि अभिप्राय में पड़ा है कि ये पदार्थ अच्छा नहीं है, वो पदार्थ अच्छा है, तो उस पदार्थ का जब उदय आएगा, जिसके हमको हलवा अच्छा लगता है और हलवा भोजन में आया भी पुरस्कार में भी पुरुष दिया और हमारा अभिप्राय में तो वो चीज हमारे हमको भाती है, अभिप्राय में तो उसका अच्छापन है, तो उदय काल में आत्म जागृति नहीं रहेगी, उदय काल में उस फिर जागृति नहीं रहेगी, उसका अच्छा पने का राग का रस आए बिना रहेगा नहीं, ये बात हो जाएगी। और टीका मैंने आत्म प्रत्यय पुरुषार्थ ही नहीं चल सकेगा, मैं नायक हूं बात मां ज्ञाता दृष्टापने का पुरुषार्थ चलेगा ही नहीं, वो बात कहीं रह जाएगी। ज्ञाता दृष्टापने की जो सुनी है वो धारणा कहीं और रह जाएगी और वो चीज अच्छी है इसका रस चढ़ जाएगा, नियम से चढ़ जाएगा। इसलिए सबसे प्रथम क्या करना चाहिए, इसलिए सबसे प्रथम अनुभव पद्धति यानी प्रयोग पद्धति द्वारा अभिप्राय बदलने में आए हैं तो भी नायकपना का अस्थि का पुरुषार्थ उत्पन्न हो और सफल भी हो, वरना न पुरुषार्थ चलेगा न कोई सफलता मिलेगी। विकल्प अगर होगा तो भी बेकार जाएगा, प्राय तो विकल्प भी होगा नहीं, ऐसे ही घुस जाएगा, क्योंकि अभिप्राय में चीज अच्छी बुरी मान रखी है।
इसका मतलब अनुभव बदल से आ गए तभी ये
अभिप्राय बदलने का साधन अनुभव पद्धति है, प्रयोग पद्धति है, अवलोकन पद्धति है, इसके बिना अभिप्राय बदल सकते नहीं है। मात्र वांछन विचार श्रवण से अभिप्राय नहीं बदलता, कहने की वो बात है, मात्र वांछन विचार श्रवण करने से अभिप्राय बदल जाएगा नहीं, अभिप्राय तो वो का वो रह जाएगा, धारणा हो जाएगी लेकिन अभिप्राय बदलेगा नहीं,
अभिप्राय बदलने का भ्रम रह
जाएगा, अभिप्राय नहीं बदलेगा। इस प्रकार ज्ञाता भाव से या साक्षी भाव से रहने के पुरुषार्थ में भी अभिप्राय की भूमिका का बहुत महत्व है, ज्यादा महत्व है, ऐसा समझना चाहिए। देखो ये सब बात लिया है मुमुक्षु की भूमिका का ही लिया है, जो भी दृष्टांत लिए हैं कि अभिप्राय में गड़बड़ कैसे रहती है, वो मुमुक्षु की भूमिका में जो चूक होती है, भूल होती है अभिप्राय वाली, उसी का ही चर्चा किया है। जी अभिप्राय में क्या है कि एक पूर्वग्रह होता है जिसको हम मिसकॉन्सेप्ट कह सकते हैं, हमारा जितने भी कंसेप्शन है वो कंसेप्शन जो है वो यथार्थ होना चाहिए, मिसकॉन्सेप्ट से गड़बड़ ज्यादा होती है। तो सबसे पहले ये जो मिसकॉन्सेप्ट है वो मिट जाना चाहिए, तो सत्संग इसके लिए है और प्रयोग भी इसके लिए है कि हमारे जो अभिप्राय है वो अभिप्राय की गलती निकल जाए, तो फिर आगे का काम आसान हो जाता है। और अभिप्राय की गलती रह जाती है तो हमारे जो भी साधन है प्रयत्न है वो निष्फल हो जाता है। इसलिए बात थोड़ी गहराई की है, अभिप्राय का जो विषय है थोड़ा गहराई का है। और अभिप्राय के साथ आगे आ चुकी बात है, मैं दोहराता हूं, अभिप्राय के साथ श्रद्धा का सीधा संबंध है। जैसा अभिप्राय गढ़ेगा घड़तर होएगा वैसे श्रद्धा बन जाएगी आगे जाकर के, पर वैसी योग्यता उत्पन्न हो जाएगी, वरना योग्यता आएगी नहीं। इसलिए अभिप्राय का परिणमन में बहुत बड़ा महत्व है, ऐसा जान करके उसी पर जो है वो सारी चर्चा लिया है। और जब तक जीव को मंद बुद्धि यानी कि कर्म जनित जो अवस्था है ऐसा मैं हूं ऐसा अभिप्राय वर्तता हो, तब तक उस जीव को अपना मूल स्वरूप का प्रतिभास नहीं आता। पर्याय बुद्धि उसमें मूल स्वरूप का प्रतिभास नहीं आता। पर्याय बुद्धि मंद हो जाती है तब वो प्रतिभास आ सकता है। फिर भी जो स्वयं को अपने को अमंद और ज्ञायक स्वरूप कल्पना में लेता है तो उसको निश्चयाभास की उत्पत्ति हो जाती है। जैसा निश्चय स्वरूप है वैसा ज्ञान में सीधा प्रतिभासित नहीं हो, सीधा माने राग के आड़ बिना, राग की प्रधानता को छोड़ करके ज्ञान की प्रधानता में है, मैंने आत्मा की प्रधानता में आत्मा को प्रतिभासित होता है। आत्मा 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 को आत्मा की प्रधानता में प्रतिभासित होता है। वो प्रतिभास कब आएगा कि कर्म जनित पर्याय की पकड़ ढीली हो जाएगी तब, क्योंकि वो कर्म बंद है, मैं ऐसा हूं ये पूर्वग्रह है उसको स्वरूप को प्रतिभास में आने देगा नहीं, ये बात बन जाएगी। फिर भी मान ले, कल्पना कर ले कि मैं तो ज्ञायक हूं, मैं तो शुद्ध हूं, मैं तो अवध स्पष्ट हूं, मैं तो ध्रुव हूं, परम पारिणामिक भाव हूं, कल्पना है, विकल्प है कोरा, और उसमें निश्चय आभास होने की परिस्थिति बन जाती है। उस प्रकार से आगे भी बहुत सी बातें अभिप्राय के विषय किसमें चर्चा किया है। प्रकरण तो काफी लंबा छोड़ा बाकी है, समय हुआ है, आगे की बात और अवकाश पर लेंगे।